खंड दूसरा, भारत माता, अध्याय पहला। जैसे जैसे मैं भारतीय ग्रामीण अंचल में अंदर प्रविष्ट होता गया, मैं इस भावना से अभिभूत हो गया कि अंततः अब मैं भारत पहुंच गया हूं। शाम ढल रही थी। मैं अपने अंतकरण में पेड़ों के हर पत्ते, आकाश में चमकते हर सितारे और खेतों में खड़े हर पौधे का आलिंगन कर रहा था। सब कुछ नवीन था, रोमांचक था, किंतु साथ ही बहुत जाना पहचाना भी। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, दूर क्षितिज तक फैले हरे भरे खेतों को एक गहरी निरवता ने ढक दिया। कुछ पंछी चहचहा रहे थे तथा मेंढक और झिंगूर आवाजें निकाल रहे थे। मुझे ये भली भांति ज्ञात था कि मैं अपने बलबूते पर इस विषम यात्रा के इस पड़ाव तक नहीं पहुंचा हूं। ये केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाया। आज मैं अपने घर पहुंच गया। कुछ दूर आगे चलकर मैंने एक कार को रोका। कार चालक ने गर्मजोशी से मेरा अभिवादन किया और मुझे पंजाब के फिरोजपुर शहर ले गया। मधुर वार्तालाप के पश्चात हम रेलवे स्टेशन पहुंचे। उसने मुझे पुरानी दिल्ली तक पहुंचाने का प्रस्ताव दिया। अपनी पूरी यात्रा में मैं कभी भी रेलगाड़ी में नहीं घूमा था। सदैव या तो हिचहाइक किया या कभी ट्रकों के पीछे, तो कभी गरीब लोगों की बसों में। एक बार ऊंट पर और अनेक बार नौकाओं में सवारी की थी। अब रेल यात्रा का अवसर प्राप्त हो रहा था। मैं उसे कैसे ठुकरा सकता था। आरामदायक यात्रा की आशा में मैं अपने नए मित्र के साथ प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर फेरी वाले अपने अपने ठेलों पर पूरा खाना, नाश्ता, फल, खेल खिलौने, बिस्कुट, पत्रिकाएं, दवाइयां, चाय और कपड़े लिए घूम रहे थे। ऐसे व्यंजन जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था, वे ठेलों पर पकाए जा रहे थे। कोई सब्जियों को गाढ़े पीले घोल में डुबोकर उबलते तेल की कढ़ाई में तल रहा था, जैसे पकौड़े और पूरियां। तो कोई दूसरे ठेले पर आटे के चपटे गोलों को धुआं उठते तेल में डाल रहा था, जो तुरंत गुब्बारे की तरह फूल जाते थे। पूरियां पास में ही लकड़ी से जलते चूल्हे पर रेत से आधी भरी लोहे की कढ़ाई रखी थी। दुकानदार कढ़ाई में रेत को हिलाते हुए उसमें मूंगफलियां भून रहा था। तेल में पकते तीखे मसालों की गंध डीजल के धुएं और अगरबत्ती की सुगंध में घुल रही थी। सैकड़ों लोग अगली ट्रेन की प्रतीक्षा करते हुए जोर जोर से बातें कर रहे थे। अनेक परिवार रेल की पटरियों के किनारे मानो पिकनिक मना रहे हो। कुलियों ने अपने सिरों पर भारी संदूकों को संतुलित किया हुआ था और केवल एक पतले से लाल कपड़े ने उनके सिर एवं भारी बोझ को अलग कर रखा था। भिखारी अपनी विकृतियों को दिखा दिखा कर भिक्षा की याचना कर रहे थे। उनमें से कुछ अंधे या लंगड़े, कुछ बगैर हाथ या पैर के, कुछ जले चेहरे वाले तो कुछ क्षत विक्षत अंगों वाले। कोढ़ पीड़ित एक व्यक्ति अपनी गली अंगुलियों को लोगों के चेहरे के आगे कर भिक्षा मांग रहा था। फटे कपड़े पहनी माताएं बच्चों को लिए घूम रही थी। बच्चों की आंखों से पीप निकल रही थी और मक्खियों के झुंड उनके चेहरों पर मंडरा रहे थे। ये सभी अभागे लोग भिक्षा की याचना करते हुए एक व्यक्ति से दूसरे के पास जा रहे थे। ऊपर लाउडस्पीकर पर निरंतर घोषणाएं हो रही थीं। नीचे प्लेटफॉर्म पर लोगों के थूक के निशान थे। इस सब गहमा गहमी के बीच भी अनेक लोग जमीन पर चैन की नींद सो रहे थे। जब हमारी ट्रेन के आने की घोषणा हुई तो सभी यात्री अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। सीटी बजी, इंजन की चिमनी से काला धुआं उमड़ रहा था और भाप निकल रही थी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास आई, सैकड़ों लोग पूरी तेजी से चलती ट्रेन के साथ दौड़ने लगे। मेरा दोस्त भी अपनी पूरी शक्ति के साथ दौड़ा। मेरे पीछे आओ, वो चिल्लाया। जब ट्रेन की गति थोड़ी धीमी हुई तो लोग खिड़की से अंदर छलांग लगाने लगे। मेरे मित्र ने दौड़ते हुए खिड़की के अंदर पहले अपना थैला फेंका और फिर उसके पीछे छलांग लगा दी। मैं भी पूरे वेग से दौड़ रहा था। ट्रेन के अंदर से उसने मुझे आवाज दी, अंदर कूदो इससे पहले कि देर हो जाए। चलती गाड़ी के खिड़की से भीतर छलांग लगाना बहुत ही भयावह लग रहा था, पर हर कोई ऐसा ही कर रहा था। अंततः कुछ डिब्बों के जाने के पश्चात मैंने भी छलांग लगा दी और खिड़की के हत्ते को पकड़ लिया, लेकिन मेरी पकड़ ढीली पड़ रही थी। नीचे देखकर मैं चिल्लाया, लोहे के बड़े बड़े पहिए पटरी पर घूम रहे थे। मैं कमजोर पड़ने लगा, हाथ पैर मारकर मैंने जैसे तैसे स्वयं को ऊपर खींचा और चलती गाड़ी में खिड़की से अंदर घुस गया। कुछ ही क्षणों में दो और लोग मेरे पीछे उसी खिड़की से अंदर घुस आए। मैंने चलती ट्रेन के अंदर आसपास देखा तो पाया कि हर खिड़की से लोग कूदकर सरकते हुए अंदर आ रहे थे। जब तक ट्रेन रुकती, हर डिब्बा इतना ठसाठस भर चुका था कि किसी के अंदर आने की संभावना ही नहीं थी। बैठने के लिए स्थान मिलने का तो प्रश्न ही नहीं था। दीवार पर लिखा था अधिकतम 60 यात्रियों के लिए। मैं गिनती तो नहीं कर पाया, लेकिन शायद मेरे आसपास 200 लोग ठूंसे हुए थे। कंडक्टर द्वारा टिकट निरीक्षण के प्रयत्न की संभावना भी नहीं थी। मेरा दोस्त मुझसे अनेक डिब्बे आगे एक अन्य डिब्बे में कूद गया था और मैं उसे दोबारा नहीं देख पाया। हर कोई मुफ्त की यात्रा कर रहा था। बाद में मुझे पता चला कि भारतीय रेल के तीसरे दर्जे में यात्रा करने का अक्सर यही तरीका होता है। इसका मूल्य तो चुकाना पड़ता था, लेकिन रुपयों में नहीं। ट्रेन के अंदर भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी, फिर भी सभी आश्चर्यजनक रूप से शांत थे। आखिरकार ऐसी यात्रा उनके रोजमर्रा का कार्य थी। ट्रेन ने गति पकड़ ली। कुछ लोग अभी भी आधे बाहर लटके हुए थे, फिर भी वे निश्चिंत प्रतीत हो रहे थे। मैंने ऊपर सामान रखने के लिए लोहे की छड़ों से बना रैक देखा, लेकिन सामान के बजाय दर्जनों लोग उन रैकों पर सिमट कर बैठे हुए थे। मैं भी लगभग 3 फुट का एक खाली स्थान देखकर ऊपर चढ़ लिया तथा जैसे तैसे अपने शरीर को कसकर सिकोड़ते हुए अन्यों के साथ बैठ गया। जब मैंने रैक से नीचे खचाखच भरी हुई भीड़ को देखा तो मुझे ऐसा लगा मानो मैं लग्जरी क्लास में यात्रा कर रहा हूं। भारत भूमि ने मुझे रोमांच से भर दिया। कोयले का पुराना इंजन पूरी रात सीटी बजाता और हिस हिस करता हुआ भोर की पहली किरण के साथ पुरानी दिल्ली स्टेशन पर पहुंच गया। इस बात से अनभिज्ञ कि कहां जाऊं, मैं नीचे उतरा और रेलवे प्लेटफॉर्म पर उद्देश्यहीन चलने लगा। अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर बुलाया, मंक मंक, विश्वास नहीं हो रहा कि ये तुम्ही हो। जब ये जानने के लिए मैं पीछे मुड़ा कि कौन मुझे बुला रहा है, तो मैंने उन्हीं दो फ्रांसीसियों को पाया जिन्हें मैं स्विट्जरलैंड में मिला था। हमने वहां जिनेवा झील के तट पर तिब्बतन बुक ऑफ द डेड नामक पुस्तक पर चर्चा की थी। मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझे अपने निवास स्थान पर चलने का आग्रह किया ताकि मैं स्नान और कुछ आराम कर सकूं। रिक्शा से हम न्यू क्राउन नामक एक सस्ते होटल पर पहुंचे। स्नान करने के पश्चात मैं बरामदे में भूमि पर लेटकर विश्राम करने लगा। कुछ समय पश्चात मुलायम बालों वाली एक पूंछ ने मेरे चेहरे को रगड़ते हुए मेरी नींद को भंग कर दिया। मैंने आंखें खोली तो एक भूरे रंग के बंदर को अपने सामने बैठा पाया। उसके गुलाबी चेहरे पर हरी आंखें मुझे घूर रही थी। मैंने वापस उसे देखा। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जंगली बंदर भीड़भाड़ वाले महानगर में खुलेआम घूम सकते हैं। अन्य 20-30 बंदर इस छत से उस छत पर छलांग लगाते हुए खेल रहे थे या भोजन की खोज कर रहे थे। नीचे दुकानदार अपनी अपनी दुकानें खोल रहे थे और छड़ी से उन्हें भगा रहे थे। मैं थोड़े समय तक ही उन फ्रांसीसियों के साथ रहा, क्योंकि अब वे नेपाल जा रहे थे। उनसे विदा लेकर मैंने क्राउन होटल को छोड़ा और गली में अपना कदम बढ़ाया। मैं जोश से भर गया। मेरी आध्यात्मिक खोज में अब नया क्या घटेगा। मैं अभी अभी 20 वर्ष का हुआ था और मेरे चिरवांछित लक्ष्य भारत माता की पावन भूमि अब मेरे समक्ष विस्तृत रूप से फैली हुई थी। होटल से बाहर आकर मैंने स्वयं को भीड़भाड़ वाले बाजार चांदनी चौक में पाया। गली अंतहीन दुकानों से भरी थी। कानफोड़ू संगीत बज रहा था, अगरबत्तियां जल रही थी और बंदर इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। मैंने चटकीले रंगों की साड़ियां, पगड़ियां और चारों ओर सजावटें देखी। बच्चे अपने क्रिकेट के बल्लों से खेल रहे थे और गायें आराम से यहां वहां टहल रही थी। मध्य पूर्वी देशों की गंभीर और उदासीन संस्कृति में महीनों बिताकर मुझे ये वातावरण उत्सवों की चहल पहल से भरा लगा। भीड़ भरी गलियों में घूमते हुए मैंने प्रत्येक वस्तु का अवलोकन कर उसे आत्मसात करने का प्रयत्न कर रहा था। अचानक एक व्यक्ति ने मेरा रास्ता रोका और प्रश्नों की बौछार से मेरा स्वागत किया। आपका नाम क्या है? आप किस देश से आए हैं? आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? भारत आने का आपका क्या उद्देश्य है? हमारा देश आपको कैसा लगा? साथ साथ चलते हुए मैं उत्तर सुनने लगा। क्या आप कुछ खाएंगे? उसने पूछा। जी हाँ, गर्म जोशी से मैंने उत्तर दिया। चहल पहल से दूर वो मुझे एक खाली दुकान पर ले गया, जहाँ कमर पर छोटा सा कपड़ा बांधे खुले शरीर वाले एक व्यक्ति ने हमारा ऑर्डर लिया। उसने अपनी सुलगती बीड़ी को एक तरफ फेंका और कुछ हरी पत्तियों को लेकर उन्हें पत्थर के सिलबट्टे पर तब तक घिसा जब तक उसे उसका हल्के रंग का लेप नहीं बन गया। फिर उसने अपनी तर्जनी उंगली से पूरे लेप को लोहे के एक बर्तन में डाला और पानी मिलाकर जोर से हिलाया। मिश्रण को गिलास में उड़ेलकर उसने कुछ पीसे हुए मसाले उसमें डाले, चम्मच से उसे हिलाया और मेज पर धप से रख दिया। मैंने अपने मेज़बान की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। इसे पी जाओ, उसने कहा। ये मादक तारहीत की एक प्राकृतिक पेय है, साथ में बहुत स्वास्थ्यवर्धक भी। 24 घंटे से मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए मैंने एक ही झटके में गिलास खाली कर दिया। क्या आप एक और गिलास लेंगे? उसने पूछा। मैंने कृतज्ञता से उस हरे पेय का दूसरा गिलास स्वीकार किया, उसके बाद तीसरा और चौथा भी। उसके कड़े स्वाद से मैं अपरिचित था। इसे क्या कहते हैं? मैंने पूछा। मुस्कुराते हुए उसने उत्तर दिया, भांग। मैंने पहले कभी ये शब्द नहीं सुना था। उसने मुझे विदा किया और मैं पुनः उस हलचल भरी सड़क पर चलने लगा। अचानक मेरे ऊपर नशा छाने लगा। अजीबोगरीब रंग, ध्वनियां और अनगिनत लोग मेरे चारों ओर घूमने लगे। मेरा शरीर कांपने लगा और मैं दिशाओं की सूझबूझ तक खो बैठा। मैं आते जाते लोगों से टकराते हुए आगे बढ़ने लगा। शंकाग्रस्त होकर मुझे विश्वास होने लगा कि हर व्यक्ति केवल मुझे ही घूर रहा था। मैं कैसे समझता कि भांग एक नशीला पेय है जो गांजे के पौधे से बनता है? ये सोचते हुए कि ये हानि रहित है, एक साथ मैंने उसके 4 गिलास पी लिए थे। मैं ये सोचकर और दुखी हो गया कि अनजाने में ही मैंने कभी नशा न करने के अपने व्रत को तोड़ दिया था। मैं इस अजीबोगरीब एवं अनचाही स्थिति में अकेले चलते हुए सड़क के अंत तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था, ताकि मैं इस डरावनी भीड़ से बच सकूं, परंतु ऐसा लग रहा था कि मानो सड़क का अंत ही नहीं है। मैं निःसहाय अवस्था में लोगों, गायों, सुअरों और रिक्शाओं से टकराते हुए आगे बढ़ रहा था। मैं जैसे जैसे सड़क के अंत तक पहुंचा और नशे में धुत हो लाल किले की लंबी चौड़ी 4 दीवारी को घूरने लगा। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां के राजमहल के रूप में इस किले का बृहत आकार भय उत्पन्न करने वाला था। उसके सामने ही एक विशाल खुले मैदान में भीड़ जमी थी। अपनी उन्माद की अवस्था में मैं वहां पहुंचकर जो चल रहा था देखने लगा। वहां सफेद पगड़ी पहने हुए एक बूढ़ा व्यक्ति बैठकर बांस की 2 नलियों से बना एक विचित्र वाद्य यंत्र फूंक कर बजा रहा था। वो वाद्य यंत्र 1.5 फुट लंबा था और सूखे कद्दू से बना था। वो एक सपेरा था और अपनी बीन पर विमोहित करने वाली एक धुन बजाते हुए इधर उधर झूम रहा था। उसके आसपास हाथ से बनी ढक्कन वाली लगभग 10-12 टोकरियां थीं। काले वस्त्र और लाल पगड़ी पहने दाढ़ी वाले एक आदमी ने उन सारी टोकरियों को खोल दिया। भीड़ जैसे सकते में आ गई। जैसे ही उस सपेरे ने अपनी बीन से एक सम्मोहक गीत बजाया, अनेक विषैले कोबरे अपने भयानक फन ऊपर उठाए प्रकट हुए। 2 भागों में फटी उनकी जिह्वा मुख से अंदर बाहर लपलपा रही थी। वे इधर उधर झूम रहे थे, मानो संगीत पर नृत्य कर रहे हों। उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने फिर अन्य टोकरियां खोलकर अलग अलग प्रकार के सर्प दिखाए और अंततः एक बड़े सांप को उठा लिया, जो लगभग 12 फुट लंबा और 3 इंच मोटा था। उसे देखकर भीड़ पीछे हट गई। इससे पहले कि मैं पलक झपक पाता, वो मेरी ओर झपटा और उस विशालकाय सर्प को मेरी कमर से लपेट दिया। धीरे धीरे वो सांप ऊपर की ओर रेंगने लगा और उसने मेरी कमर एवं छाती को अपनी ठंडी एवं शक्तिशाली कुंडली में लपेटते हुए मेरी भुजाओं को मेरे धड़ के साथ बांध दिया। उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ ही दूर, इंच दूर था और मैं उसकी सांस के स्पर्श और उसकी जीभ लपलपा रही थी। जैसे ही उस सांप ने अपनी कुंडली का कसाव बढ़ाया, मेरा हृदय जोर जोर से धड़कने लगा और अंग कांपने लगे। भांग का नशा अभी भी अपनी चरम सीमा पर था। भयानक दृश्य मेरी आंखों के आगे उभरने लगा। मेरा सिर चकराने लगा और भय मुझ पर हावी हो गया। इसी बीच दर्शकों को बढ़ती भीड़ ने एक सुरक्षित दूरी रखते हुए मुझे घेर लिया। अचानक एक व्यक्ति आगे आया और बोला, आपका नाम क्या है सर? आप किस देश से हैं? आप क्यों इस भयानक सांप की कुंडली में फंसे हैं? कृपया मेरी सहायता करें, मैंने हांफते हुए कहा। मैं ऐसा बोलते ही सांप ने अपनी जकड़ और कस ली। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो ईर्ष्यापूर्वक मेरा पूरा ध्यान अपनी ओर ही चाहता था। लाल पगड़ी पहने दाढ़ी वाला वो आदमी मेरे पास आया और मेरी आंखों में ऐसे घूरने लगा मानो मैं कोई विदेशी आक्रमणकारी हूं। अपने हाथों को हथियार की तरह घुमाते हुए वो चिल्लाया, 50 रुपये 50 रुपये। अंत में भीड़ में ऐसे किसी ने मुझे समझाया, वो सांप को तभी उतारेगा जब आप उसे 50 रुपये देंगे। बड़ी मुश्किल से मेरी आवाज निकली, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस दर्शक ने चेतावनी दी तो तुम ऐसे ही रहोगे और बेपरवाही से चला गया। मेरा मन शून्य हो गया। भय एवं अपमान की भावनाएं मेरे अंदर दौड़ने लगीं। हर कोई मेरी ओर घूर रहा था कि कैसे एक अपरिचित विदेशी सांप के चंगुल में फंसा हुआ है। शायद वे सोच रहे थे कि मैं भी इस तमाशे का हिस्सा हूं। लंबा और घोर उत्पीड़क आधा घंटा बीत गया। सांप अभी भी अपने होंठ चाट रहा था और बीच बीच में मेरी ओर घूर भी रहा था। इन सब के बीच वो बूढ़ा सपेरा अपना विमोहक गीत बजाता रहा और विषैले कोबरे झूमते रहे। नकारात्मक विचारों ने मेरी चेतना को झुलसा दिया। भारत में मेरा ये पहला ही दिन था। सांप के विषैले दांतों को देखते हुए मैं सोचने लगा, क्या ये वही स्थान है जिसके लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाली? मेरे माता पिता मुझे घर से इतने दूर से हाल में देखकर क्या सोचेंगे? और कोई चारा न देखते हुए मैं अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, यदि आपके पास मेरे योग्य कुछ कार्य है जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो कृपया मेरी सहायता करें। जैसे ही मैंने ये सरल प्रार्थना कही, वैसे ही मैंने अपने अंतःकरण में शांति की एक छोटी सी लहर का अनुभव किया। अंततः भीड़ में से एक व्यक्ति निकला, झुर्रियों भरे उसके हाथ में एक जपमाला थी। मेरे प्रति सहानुभूति रखते हुए उसने सपेरे से मोलभाव किया और मुझे छुड़ाने हेतु 10 रुपये दान में दिए। जैसे ही सपेरे ने मंत्र जपकर सांप को अपने हाथों में बुलाया, मैंने राहत की सांस ली। सांप को मुझे छोड़ता देखकर भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। दानी को धन्यवाद देते हुए मैं शीघ्रता से सड़क के उस पार दौड़ पड़ा। वहां मैंने लकड़ी की कुर्सियों पर बैठे कुछ लोगों को लाल टॉफी जैसी कोई चीज मुंह में डालते हुए देखा। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या वो मुझे भी चाहेंगे? भारत की रीति रिवाजों और मेरा मुंह ऐसे जलने लगा मानो आग लग गई हो। मैं पसीने से भीग गया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पानी उठाया और पी गया, किंतु पानी ने आग पर घी का काम किया। मेरी पीड़ा और बढ़ गई। मैंने सूखी लाल मिर्च खा ली थी जिसे मैंने पहली बार देखा या खाया था। पुनः जिज्ञासु दर्शकों की भीड़ मेरे चारों ओर जमा हो गई। मैंने नम्रतापूर्वक उन व्यक्तियों को धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चल दिया। मैं इस कहावत पर विचार करने लगा, जो एक व्यक्ति के लिए भोजन होता है दूसरे के लिए विष हो सकता है। आज ये कहावत एक जलते संदेश के रूप में मुझ पर चरितार्थ हुई थी। मैंने यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के विषय में जो पढ़ा और देखा था तथा बौद्ध धर्म के अपने अन्वेषण एवं भारत के कुछ दर्शनों के विषय में जो कुछ जाना था, उन सब पर मैं विचार करने लगा। जो वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए सुखदायक होती है वही दूसरे के लिए पीड़ादायक भी हो सकती है। संसार की हमारी अनुभूतियां कितनी सापेक्ष हैं और किस हद तक वे हमारी व्यक्तिगत अनुभवों से प्रभावित होती हैं। उसी प्रकार से भगवान जो कि पूर्ण हैं, अलग अलग लोगों के समक्ष स्वयं को अलग अलग मार्गों से प्रकट करते हैं। मेरा मुंह अभी जल रहा था। मुझे आज ये अनुभव हुआ कि मेरी ये सोच कितनी संकीर्ण है कि भगवान की ओर केवल एक ही रास्ता जाता है। शाम होते होते भांग और मिर्च का प्रभाव आखिरकार उतर गया। चांदनी चौक की सड़क पर वापस लौटकर मैं लक्ष्यहीन हो उस भीड़ वाले बाजार में इधर उधर घूमने लगा। मेरे पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। पदयात्रियों की भीड़ में से एक आदमी मुस्कुराते हुए बाहर आया। ये जानकर कि मैं इतनी दूर से यहाँ उसकी संस्कृति को समझने के लिए आया हूँ, वो अत्यंत उत्साहित हुआ और उसने सड़क किनारे स्थित एक भोजनालय में मुझे रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। भोजनालय के बाहर हमारी खाने की मेज सड़क से कुछ ही दूर थी। जब वो मुझे अपनी पारिवारिक रीति रिवाजों के बारे में बता रहा था, एक गाय अपने बछड़े को पुचकारती हुई हमारे पास से गुजरी। उनकी भाव भंगिमाएं सौम्य, चाल सजीली और लंबी सुंदर आंखें मासूमियत से भरी हुई थी। उन्हें देखकर मेरा हृदय पिघल गया। वो माँ अपने बच्चे की हर गतिविधि पर नज़र रखे हुई थी। जब बछड़ा उसका दूध पी रहा था तो वो उसे स्नेहपूर्वक चाट रही थी। हमारी मेज से कुछ ही आगे वो अपने बछड़े के साथ खेलने लगी। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक गाय को इतनी निकटता से नहीं देखा था। हम केवल अपनी कार से महामार्गों पर आते जाते उन्हें दूर खेतों में चरते हुए देखते थे। मैं आज ये देखकर अचंभित हुआ था कि कैसे इन पशुओं में भी बिल्कुल वैसा ही प्रेम था जैसा कि एक मानवीय माँ और उसके बच्चे में होता है। बैरे ने आकर मेज पर प्लेटें सजा दी। मैं बहुत भूखा था क्योंकि पूरे दिन में मैंने केवल थोड़ी भांग पी थी और लाल मिर्च ही खाई थी, तथा सांप के साथ जूझने से मेरी भूख और भी बढ़ गई थी। मैं खाने पर झपटा। खाने के बीच में मेरे दयालु मेज़बान ने मुझसे पूछा, रिचर्ड जी, क्या आप जानना चाहेंगे कि ये कौन कौन से व्यंजन हैं? हाँ कृपया बताइए। हर व्यंजन की ओर संकेत करते हुए उन्होंने बताया, ये चावल है, ये जो गेहूं की ब्रेड जैसा है इसे रोटी कहते हैं, ये सब्जी है, सूप जैसी है ये दाल है, ये हमारी चटनी है। तब उसने चावल के ऊपर कुछ छोटे टुकड़ों की ओर संकेत किया, और ये मांस है, मांस। उसके अंतिम तीन शब्दों से मेरे मन में हलचल मच गई। मैंने पहले उन मांस के टुकड़ों को टकटकी लगाकर देखा और फिर निकट खड़ी गायों को। उसी समय वो गाय आगे झुककर मेरा पैर चाटने लगी। मेरा हृदय करुणा से रो उठा। मांस के कुछ टुकड़ों के लिए एक सुंदर जीव को क्यों काटा जाए? ये गाय अपने बच्चे से प्रेम करती है और ये मासूम बछड़ा अपनी माँ से। क्यों मैं अंधा होकर इसमें शामिल हो गया? क्यों हम हर कसाई घर में होने वाले इस बीभत्स कार्य के प्रति अंधे और बहरे बन जाते हैं? क्यों ये मानव समाज भगवान की इन संतानों के प्रति होने वाली क्रूरताओं के प्रति संवेदनाहीन बन गया है? भले ही मैं जो मांस खा रहा था वो गोमांस नहीं था। जीवन में पहली बार मैं अपने भोजन और पशुओं के कष्टों के बीच संबंध को देख पा रहा था। अमेरिका में प्रतिदिन मारे जाने वाले हजारों पशुओं के विषय में सोचकर मैं अपने हृदय का संतुलन खो बैठा और रोने लगा। मेरा हैरान मेज़बान समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। सब ठीक है ना? कुछ गड़बड़ है? आप इतने विचलित क्यों हो गए? मैंने मुश्किल से उत्तर दिया, आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए धन्यवाद। मैं खड़ा हुआ और अपनी कुर्सी को पीछे खिसका दिया। कृपया क्षमा करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाहर जाते हुए मैंने गाय और उसके बछड़े को थपथपाया और उस गाय ने धीरे से मेरा हाथ चाटकर उसका उत्तर दिया। हजारों लोग सड़क पर आ जा रहे थे। इस आवाजाही के बीच जैफ और रामसे को अचानक सामने देख मैं आश्चर्यचकित एवं प्रसन्न हो गया। पहले तो मुझ पर उनका ध्यान ही नहीं गया। काबुल में उनसे बिछड़ने के बाद मैं पहली बार उन्हें देख रहा था। मंक, तुम? जैफ चिल्लाया, तुम्हें यहां देखकर हमें कितना अच्छा लग रहा है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे दोस्त, रामसे ने कहा, जब से तुम गुम हुए तब से हम तुम्हारी चिंता कर रहे थे। हाथ मिलाकर और एक दूसरे से गले लगकर हम फिर से इकट्ठे हो गए। वे एक सस्ते होटल की छत पर रह रहे थे। मुझे भी साथ ले गए। तारों से जगमगाती उस सर्दी की रात जब मैं चारपाई पर सो रहा था तो वो गाय और उसका बछड़ा मेरे स्वप्न में आए। आंसुओं से भरी उनकी कोमल आंखें निस्सहाय भाव से मेरी ओर देख रही थी और एक कसाई का चाकू निर्ममता से उन्हें काट रहा था। तभी मेरे हृदय में बाइबल का उपदेश स्मरण हो आया, तुम हत्या मत करो। जब मैं उस दुःस्वप्न से जागा तो मेरा जी मिचलाने लगा और उल्टी करने के लिए मैं शौचालय की ओर दौड़ा। छत पर बना सीमेंट का एक छेद ही पाखाना था। उसके चारों ओर ईंट और की भुरभुराती दीवारें थी और छत के नाम पर एल्यूमिनियम का एक पतरा था। वहां पर घनघोर अंधेरा था और मल निकास की कोई व्यवस्था नहीं थी। भंगी आकर फावड़े से मल को बाल्टी में डालकर अपने सिर पर उठाकर ले जाते थे, लेकिन लंबे समय से इसकी सफाई नहीं हुई थी। मलमूत्र का ढेर लगा हुआ था। उल्टी पर उल्टी करता मैं उस पाखाने के अंदर बैठने पर विवश था। भिनभिनाते कीड़े काट रहे थे और मुझे अपने पैरों पर कुछ सरकता सा महसूस हुआ। उपकाइयां करता हुआ मैं ठंडे पसीने से कांपने लगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अपने मन की आंखों से मुझे केवल वे दो गायें दिखाई दे रही थी जो अपनी मासूम आंखों से मुझे निहार रही थी। पुरानी दिल्ली के उस होटल के छत पर स्थित उस अंधेरे शौचालय में मैंने अपने भगवान को एक और वचन दिया, मैं जीवन में फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। इसी के साथ भारत में मेरे पहले दिन की समाप्ति हुई। अगले दिन जैफ और रामसे ने मुझे कहा, यात्रा के लिए हमारी टीम बढ़िया है, क्यों न हम एक साथ मिलकर भारत का भ्रमण करें। हम एक साथ बहुत सी परिस्थितियों से गुजरे हैं, मैंने कहा, और हमारे बीच भाइयों जैसा रिश्ता बन गया है। मैं आप दोनों से की मित्रता और दया का कृतज्ञ हूं तथा कभी भी इसका बदला नहीं चुका पाऊंगा, किंतु मैं साधुओं की तरह हिमालय में घूमना चाहता हूं। कृपया उसके लिए मुझे आशीर्वाद दें। जैफ पहले बोला, उसकी वाणी दया से भरी थी, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। हमें पहले से ही आशा थी कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे। उसने अपना बड़ा हाथ मेरे छोटे कंधे पर रख दिया। हम प्रार्थना करते हैं कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें प्राप्त हो। तुम हमें बहुत याद आओगे। रामसे के चेहरे पर चिंता के बादल से छा गए, क्योंकि मैं उसके छोटे भाई जैसा था। उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम कैसे उस प्रकार का जीवन झेल पाओगे? किंतु मेरा दृढ़ निश्चय देखकर वो न चाहते हुए भी मुस्कुराया और अपने ऑस्ट्रेलियन लहजे में बोला, ये एक बहुत सुंदर यात्रा रही दोस्त, चीयर्स। बिछड़ने से पहले जेफ ने मेरे हाथ में एक छोटा सा पत्र दिया जिस पर लिखा था, ये दुख की बात है, हम सभी अपने रास्ते पर चल रहे हैं। आत्मान्वेषण के लिए मुझे विश्वास है कि तुम अवश्य उसे पालोगे। दूसरे खंड का पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है।